نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امبیسیڈر آف اسلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فورتھ ویک کا آغاز کرتے ہیں ذرا سا اس لیس کو دہرا لیجئے جو آپ کے سامنے اسلام کے دو حصے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ کے پھر دو حصے دو بنیادیں عقائد اور عبادات عقائد میں سب سے اوپر ایمان باللہ جو جان ہے سارے ایمان کے باقی جزیات کی پھر ایمان بالکتاب ایمان بالرسل ایمان بالتقدیر ایمان بالآخرہ ایمان بالملائکہ ان سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت کی توکل کی شکر کی اور اللہ پہ راضی رہنے کی جڑیں پھوٹتی ہیں وہ جڑیں جب اوپر آتی ہیں تو ایک باریک نازک سے تنے کی صورت میں جس کو ہم عبادات کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ پختہ ہوتا ہے اور عبادات کی قسمیں نماز زکاة روزہ حج اور زکاة اور اس میں حج یعنی یہ سیکوینس ہے نماز زکاة روزہ اور حج عبادات پختہ ہوتی ہیں انسان کی ایک تنے کی طرح موٹا گرو ہوتا ہے یہاں پہ اگر کوئی درخت کو اوپر سے کاٹ دے مائی کوسچن یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیا نوٹ کریں اف سمن سیز وٹ از دس تصور کی آنکھ سے ایک مثال لیجئے اب دیکھیے کہ درخت کیا ہے تنا نیچے جڑ ہے اوپر اس کے برانچز ہیں پھر پتے ہیں اور اس کے بعد فروٹس لٹک رہے اف سمن کمز اور آ کر بولتا ہے کہ فروٹ تو کھاتا کوئی نہیں نیچے گر جاتا ہے برڈز کھاتے ہیں گند ہوتا ہے کچرا ہوتا ہے لیٹ می آئی ول ٹیک آؤٹ آل دا فروٹ اور وہ سارا فروٹ پک کر جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ درخت کا پھل اتر جاتا ہے اب کوئی پوچھے کسی کو راہ چاہتے کو بتاؤ یہ کیا ہے وہ کیا کہے گا اسٹل اٹس اے ٹری ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس کی مور ڈسکرپشن ٹری ود آؤٹ فروٹ وٹ ایور بٹ اٹس ٹری لکھ لیں آپ فرسٹ اسٹیپ If someone picks up all the fruit of the tree, still it remains tree. آپ بنا اس پہ ایک بڑی خوبصورت ایکٹیویٹی بن سکتی ہے سیکنڈ پرسن ول کم اینڈ ٹیک اے لک آن دا سیم ٹری اور وہ سوچتا ہے کہ اٹس اے ٹری بٹ اٹ ہیز نو فروٹس اور پھر وہ کیا دیکھتا ہے نیچے بہت سارے پتے گرے ہوئے ہیں اینڈ دیز آل لیوز آر میکنگ میس بہت ہی میس ہو رہا ہے اب جب یہ میس ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف دیز لیوس پتوں کا تو فائدہ کوئی نہیں فروٹ اس میں ہے کوئی نہیں کریں کیا لیٹ می ٹیک آؤٹ آل دا لیوس وہ اس درخت کے سارے پتے اتار دیتا ہے ناؤ اف یو ول آسک اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں بتاؤ یہ کیا ہے وہ کہے گا آف کورس اٹس اے ٹری یہ درخت ہے بٹ ود آؤٹ فروٹس اینڈ ود آؤٹ لیوس ٹھیک ہے یہ بھی بات ہو گئی بٹ اسٹل اٹس ٹری وہ بھی چلا گیا ایک تھرڈ مین ول کم ایک تیسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ جس پہ نہ فروٹ ہے نہ اس کے پتے ہیں ہاں برانچز پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ساری برانچز جو ہیں یہ ادھر ادھر جگہ لے رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے آتے جاتے کپڑوں میں گھس رہی ہیں کچھ بھی کر کر آ رہی ہیں تو لیٹ می ٹیک آؤٹ آل دیم وہ ایکس لے کے آتا ہے کلہاڑی اور وہ برانچز ساری ادھر ادھر سے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے تصور میں لائیے کہ ایک درخت ہے جب برانچز ساری اوپر سے اتار کے صرف نیچے کا ایک اسٹیم چھوڑ دے نو دس از دا پوائنٹ اب جب وہ اس پورے تصور میں لائیے کہ بس ایک اسٹیم کھڑا ہے نتھنگ از دیئر ہیئر کچھ بھی نہیں کٹ 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 اب کوئی آپ اس کو پوچھے کہ بتاؤ وٹ از دس ہاؤ مینی پیپل ول سی دس اینڈ سے دس از اے ٹری نو ون ول سی اینڈ سے دس از ٹری کوئی بھی نہیں اس کو درخت کہے گا وہ کہیں گے دس از اے پلر وجہ کیونکہ سیدھا ڈنڈا کھڑا ہے از اے پول ڈنڈا کوئی کہے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈنڈا اس لیے ادھر کھڑا ہے کہ اس پہ کوئی ٹیلی فون کی وائرس لگنی ہے کوئی اس کو درخت نہیں کہے گا ایون نیچے روٹ بھی ہے ایون اسٹیم بھی ہے बट इट्स नॉट अ ट्री, और ये दो चीज़ें मिलके हो गया हकुकुल्ला पूरा, समझ आ रहा है? अकीदा भी अंदर छुपा हुआ है, इबादत का स्टैंड भी है, बट इट्स नॉट अ ट्री। क्या पता चला कि इवन हकुकुल्लाह पूरे करने के बावजूद अगर हमारे मामलात यानी दूसरी तरफ हकुकुल इबाद में नहीं ढलते, हम कभी भी इस्लाम का दरख्त नहीं बनेंगे। दिस इज़ पार्शल इस्लाम। इफ़ वी वॉन्ट टू अमल, अगर हम अमल करना चाहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तो हमें हकुकुल्लाह के बाद हकुकुल इबाद पूरे करने पड़ेंगे। आज यही जुल्म इस इस्लाम के साथ हम में से बहुत सारे मुस्लिम्स ने किया। आज इस्लाम को गैर मुस्लिमों ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना हम मुस्लिम्स ने दिया। कोई आया तो फ्रूट्स काट गया, दूसरा आया तो पत्ते उतार गया, अखलाक निकल गया उससे, और तीसरा आया तो उसने मामलात की टहनियाँ भी उतार दी और इस्लाम सिर्फ फोर पिलर्स ऑफ इस्लाम के नाम पे पेश कर दिया। और अगर कोई आकर कल इस तने को भी काट दे तो फिर तो वजूद भी ख़त्म। फिर ये वो लोग हैं जो कहते हैं आपको क्या पता मैं अंदर से कितना नेक हूँ। हाँ ये लग पता मैं नमाज नहीं पढ़ता। सम सिस्टर केम टू मी एंड कहने लगी कि दिस एंड दैट, मैं अपने बेटे को कहती हूँ नमाज़ पढ़ो तो वो कहता है अम्मी मैं नमाज़ नहीं भी पढ़ता, अगर तो मैं कितना सोशल वर्क करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कहती पुलिस में, और पुलिस वाले तो बहुत सारा दिन इधर उधर काम करते हैं। तो कहता है देखे ना कि मैं मुजरिमों को पकड़ता हूँ, गोलियाँ भी चलती हैं, तो क्या मैं ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो क्या अल्लाह मुझसे खुश नहीं होगा? तो मैंने कहा नहीं होगा, आप नमाज़ नहीं पढ़े तो फिर आपको ये सोशल वर्क कैसे फ़ायदा देगा। ये है अब्दुल्ला बिन जुदान का नाम, अल्लाह के नबी और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है हदीस में, कि क्या उसको फ़ायदा देगा। हातिम ताई का नाम ले लीजिए, उसकी देख कभी उतरती नहीं थी। कहा उसको फ़ायदा होगा? कैसे? कहा आयशा कैसे होगा, उसने तो एक बार नहीं कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। यानी उसने अल्लाह को अल्लाह माना ही नहीं, उससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी। तो याद रखिए ये सफ़ा आपकी मेरी अगर नामे अमाल में ढल गया, पूरा होगा, तो इंशाल्लाह फिर किसी न किसी सूरत में हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। ना सिर्फ आप अल्लाह के हुकूक देकर बचेंगे और ना सिर्फ बंदों के। आज लोगों ने दो चीज़ें की, कुछ अकीदे की बुनियाद पे कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हम नमाज ना भी पढ़ें मेरी नमाजें अंदर हैं, हमें नमाज की ज़रूरत नहीं। कोई कहता है पाँच की ज़रूरत नहीं, तीन ही बड़ी हैं। कोई कहता है सिर्फ दो ही बहुत है। राइट, आप मुस्लिम नहीं हैं। चारों चीज़ें, इससे आपको अब इस्लाम ए टू जी से मुस्लिम स्ट्रक्चर भी समझ आ जाना चाहिए। कहीं भी नमाजें अगर पाँच से कम या ज़्यादा हो गई, दैट इज़ आउट ऑफ इस्लाम। आप जो मर्ज़ी कहते रहे, ये कैसे हो गया? ज़कात 2.5 ही है, बट अगर कोई 2.5 को 10.5 कह दे, 25.5 कह दे, इट्स नॉट इस्लाम जी। और अगर कोई कहता है रोज़े, बस रोज़ा तो बड़ा मुश्किल है, वो तो आप आएँ और अपने बुजुर्ग का दीदार करें, दिस इज़ रोज़ा। और हज के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप आइए और बस फलां जगह के ऊपर बैठिए और उधर कुछ थोड़ी देर इबादत कीजिए, हज योगा। इस्लाम एक पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, अमेरिकन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको इटी बिची मिलती है ना, अगर स्ट्रीट लाइट क्रॉस करते हुए ये हो गया, अगर रोड क्रॉस की, अगर रेड लाइट पे ना रुके, सीट बेल्ट ना पहनी, हर एक के छोटे छोटे है ना कंडीशंस। तो इस्लाम के तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेटेड है। ठीक है, तो जब फिर हमें ये बात समझ आती है तो हम फिर इस्लाम के सेकंड हाफ, अगर मैं इस पेज को यूं कर दूं और जो बाद में सुनेंगे उनको मेरी आवाज़ों से समझ आएगा, लुक, अगर मैं आपकी इस शीट को हाफ कर दूं, इधर और, समझ आ रहा है? या आप हकूकुल्ला ले लीजिए या आप हकूकुल्ले बाद ले लें, बात बनेगी? दिस इज़ नॉट कम्प्लीट इस्लाम। और फिर अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आप ऐसा कीजिए, इसको निकाल दें आप, सेकंड इसके फिर थ्री पार्ट कीजिए, सिर्फ ये ले लीजिए, बात बनेगी? नहीं बनेगी। और अगर आप इसकी थ्री फोल्ड बुकलेट बना दीजिए, कुछ का इस्लाम ये है सिर्फ, आज जो पढ़ने लगे हैं, आज हम ये पढ़ने लगे हैं। इस हकूकुल इबाद के दो हिस्सों में से एक हिस्सा क्या था? मुआमलात, गुजर गया, आदाब सीख लिए, हकूकुल फ़राइज़ सीख लिए, और फिर उसके चार पार्ट्स हमने देखे, मामलात बिन नफ्स, ख़ानदानी मामलात, माशी मामलात, माशरती मामलात। ठीक है, अब जो लास्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे ये है अखलाकियात का। और अखलाक क्या है, अभी बात करते हैं, सिर्फ इस शीट को थोड़ा समझ जाते हैं। अखलाक हसना और अखलाक सैजिया, यानी शीट आपकी कैसे पूरी होगी कि सबसे पहले आपने अल्लाह के हक़ देने की कोशिश की, ठीक है, अकायद और इबादत की सूरत में। अब दूसरी सूरत यह है कि अब हर तना इस चीज़ का तकाजा करता है कि आप उसको ब्रांचेस में ढलने दें। बच्चों की ग्रोथ हो रही है ना, जिस्मानी तौर पे दांत बाद में उगते हैं, पहले नहीं होते, बाल काट जाएं फिर भी उग जाते हैं। इस तरह आप कह लें कि इस्लाम की ग्रोथ का एक नेचुरल फिनोमिनन है कि ब्रांचेस बनने दीजिए। आपका ताल्लुक बिल्ला, ताल्लुक बिन नास में ढलता है तो पता चलता है कि यू आर ग्रोइंग। अगर आप सिर्फ नमाजें पढ़ पढ़ के उसी में नेकियों के पहाड़ बनते जाएं, फ़र्ज़ के बाद सुन्नत, सुन्नत के बाद नफिल, फिर मुजाहदे, मुजाकरे, 500 दानों की तस्बियां लेकर घर में बैठे रहें, तज़किया की मंजिलें तय करते रहें, सलूक के मराहिल तय करते रहें, इट्स नॉट इस्लाम, इज़ अ स्टेगनेंट ग्रोथ। असल ग्रोथ क्या है कि आप लोगों में कूदें। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो बंदा जो लोगों में रहता है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, और उसमें एक दूसरे की प्लस माइनस आनी पड़ती है, पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। आपने अकेले कहीं जाना है, आप अकेले जा रहे हैं, दो लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हिक्सअप तो आएंगे, बट वो बेहतर है जो लोगों में रहता है और उनकी तकलीफ़ और इजाओं पर सब्र कर लेता है, उस शख्स की निस्बत जो अकेला रहता है। इस्लाम का मिजाज इज्तमाईत का है। यहाँ से इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, इस्लाम अकेले अकेले अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह खुद रो पौधों का दीन नहीं। ये दिन की 5 वक्त की नमाजें जो इबादत में हम जमात में पढ़ते हैं, इज्तमाईत का दर्स देती हैं। आप हज करते हैं, इज्तमाईत का दर्स है। पूरी दुनिया में एक दफ़ा एक बड़ा क्राउड तो देख लो, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स होते क्या हैं, दिन में 5 दफ़ा देखो तुम्हारे इस गली मोहल्ले में कितने मुस्लिम्स हैं। नमाज है, ईद की नमाज इज्तमाईत है, इस पूरे शहर के लोगों को एक जगह जमा करके एक बड़ी जगह नमाज पढ़ाओ ताकि तुम्हें अपने शहर के मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ तो समझ आ जाए। और इसी तरह से ज़कात देते वक्त देखो कि इस मुल्क में, इस शहर में, इस जगह कितने लोग ज़रूरतमंद हैं। हर इबादत इस्लाम की इज्तमाईत का दर्स देती है। आज हमें नेकियों का जब शौक़ भी आता है ना बहुत ज़्यादा, तो हम इनफरादी नेकियाँ करके बड़े खुश हैं। अगर अल्लाह के नबी ने इनफरादी दीन देना होता तो बदर से तबूक ना होती। बिलीव मी, अल्लाह के नबी जैसा कामयाब लीडर, कायद, उस्ताद, मुरब्बी, मुज़क्की मक्का में तो थे ही थे, मदीना में बेताज बादशाह होते अगर वो इनफरादी ज़िंदगी बसर करते। आपकी इबादत की कोई हद और इंतहा ना होती, लेकिन जितनी स्ट्रगल, जितने जिहाद और जितने मार्के हैं वो तो जंगों के दिख रहे हैं ना। अल्लाह के नबी साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। मदीना को जो आपने प्लान किया, जो वर्क प्लान सेट किया, ये मबाखात मदीना क्या है? आज सुबह पढ़ाया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको आज एक दिल की बात बताऊं, आज मैंने आपको फजर से पहले से याद करना शुरू किया। वाई आस्क मी, यहाँ आपको अख्लाक शुरू करा रही हूँ ना, वहाँ आज अल्लाह के हुक्म से टॉपिक क्या था? इस्लामी किरदार की कामयाबी। और आज पूरा वक्त वहाँ अख्लाक अख्लाक के, नबी सल्लम ने जो दीन का इनकलाब बरपा किया था ना, उसका फोर्थ कंपोनेंट क्या था? मुस्लिम किरदार की ताकत। यानी दलील भी दी, अपील भी किया, तनकीद भी की, ये तीन पढ़ा चुकी हूँ, आज शुरू किया है। उसका नाम है अखलाक, मुस्लिम किरदार। प्रोफेसर सल्लम ने अपने साथियों की जो करेक्टर बिल्डिंग की थी ना, असल में आपकी वो ताकत। मुस्लिम्स के पास वेपन्स नहीं होते, हमेशा ही थोड़े होते हैं, पैसे तो होते ही कोई नहीं, जंगों में नफरी भी कम थी, बट नबी सल्लम ने सहाबा की जो करेक्टर बिल्डिंग की थी ना, और जो उनका अखलाक था, ये उनकी कुव्वत थी। अखलाक इज़ स्ट्रेंथ, करेक्टर स्पीक्स हेयर, करेक्टर काउंट्स हेयर। कह लेते हैं ना कि करेक्टर इज़ हैवियर देन वर्ड्स। आप 1 लाख लफ्ज़ बोले, यानी एक मन लफ्ज़ उसके मुकाबले में एक कौन सा अमल रख दें, दैट इज़ बेटर। तो याद रखिएगा अपना इखलाक। अब चलिए अपनी शीट पे, यहाँ जो आपको पहला पेज है इस पे लिखिए होता क्या अखलाक और खुलुक, और इंशाल्लाह फिर इसको अब हम पूरे 4 दिन करेंगे। दुआ कीजिए कि हमारी भी गवाहियाँ हमारे घर वाले, हमारे साथ रहने वाले देने लग जाएं। आम तौर पे हमारे यहाँ अच्छा अखलाक किसको कहते हैं, या अखलाक का क्या तसव्वुर है? आपसे पूछने की बजाय अगर मैं ख़ुद भी बता दूँ तो आई थिंक सो हम सब का सेम ही आंसर होगा, क्योंकि हम सब का ब्रॉटअप इंडियन और पाकिस्तानी, यानी सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा अखलाक क्या है? बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना। फलां का अखलाक बड़ा अच्छा है, आते ही भाभी चाय पियेंगे, भाई जान आप बैठिए। हमारे अच्छा अखलाक क्या है? किसी के गले पड़ जाना और पहले उसको ठंडा पिलाना, फिर उसको गर्म पिलाना, फिर खाना तो अब खा के ही जाएंगे ना, और फिर लोग कहते हैं बड़ा अच्छा अखलाक है उनका, खाया साथ भी दे दिया, अखलाक और भी बड़ा अच्छा हो गया। यानी मोस्ट लाइकली हमारा जो कल्चरली अखलाक है ना, जहन में वही तसव्वुर आता है। और बद अखलाक या बुरा अखलाक किसी का क्या है कि मसलन गए तो उसने खाना ही नहीं पूछा। अच्छा, हमारी बहुत सारी डिक्शनरी खाने पे चलती है, पूछा ही नहीं। चाय का वक्त था, खाने का वक्त था, टरखा दिया, जुबान ही बैठ के पूछती रही क्या खाएंगे क्या खाएंगे। खाना आगे रख दिया लेकिन कहा ही नहीं खाए, कितने बद अखलाक है ना। और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत का, और उसमें सेग्रीगेशन थी कि नहीं। और अगर घर जाएं और मर्द कोई ना, और डोर पे वो कह दें कि भाई आप अभी ना आइए, घर में कोई मर्द नहीं है, इससे भी ज़्यादा कोई बद अखलाक होगा। और अमूमन मैंने देखा है जो अखलाक गिना जाता है या काउंट होता है वो बखमों का है, और आने वाली लड़की को लोग माइक्रोस्कोप में लगा लगा के देख रहे होते हैं कि ये अखलाक की किन बुलंदियों पे है? लेकिन आइए ज़रा देखें अखलाक क्या होता है। सुबहान अल्लाह, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट समझा था तो मेरा दिल किया था मैं सजदा करूं। लफ्ज़ अखलाक खुलुक से, खा लाम काफ इसका रूट है। और आपको पता है खुलुक किसको कहते हैं? वो डिक्शनरी की ज़ुबान से पुराना होना। जो कपड़ा बहुत पहन ले और वो जिसको पंजाबी में कहते हैं हंड जाए, और उर्दू में कहते हैं कि सॉफ्ट हो जाए, पतला नरम जिस्म पे पहने पता ही नहीं चला 4 साल पुराना जोड़ा जो मज़ा देता है वो नया जोड़ा देता। बोलिए, नए कपड़े दूसरों को दिखाते हैं और अपने लिए क्या पहनते हैं? पुराने। तो अखलाक पुरानी चीज़, यू फील कंफर्टेबल विद दैट, यू डोंट नीड टू पोज समथिंग पहन के, एकदम आप तकल्लुफ में नहीं गए। अखलाक क्या है, मैं एक आपको इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखिए दो लफ्ज़ पहले लिखे, खलक और खुलुक, यानी एक ही तरह लिखे, खा लाम काफ, एक पे ज़बर डाल दीजिए एक पे पेश डाल दीजिए। खल्क कहते हैं आपकी मेरी ज़ाहरी हैयत, फेस बॉडी शक्ल सूरत, वो चीज़ जिसको आँख से देखा जाता है, समझ गए, फिजिक फिजिकल अपेरेंस जो आप मेरी और मैं आपकी देख सकते हैं, और ये वो है जो आप और मैं अपनी एक दूसरे की अपनी आँख से देखते हैं। खल्क क्या है? जिसको आप आँख से देखते हैं। और खुलुक क्या है? इंसान की फितरत और तबीयत जिसे बसीरत से देखा जा सकता है। आप कह लीजिए कि खल्क आउटर स्केल्टन है और खुल्क इनसाइट है, अंदर से है। क्या पता चला कि अखलाक इंसान के जाहिर का नाम और खुलुक उसके बातिन का नाम है। फर्स्ट थिंग समझ आ गई? तीन चीज़ें बोली हैं, रिपीट करती हूँ। अखलाक खुलुक में पुराना होना है, यानी ये चीज़ अब आपकी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। आपको तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता सच बोलने में, सोचना नहीं पड़ता आपको सब्र करने में, आप सवाब समझ कर शुक्र नहीं करते। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जैसे आप देखिए कि एक प्रिंट होता है जो कपड़े के ऊपर लगाया जाता है, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहेंगे आप। पेंटिंग कर दी कपड़े के ऊपर, कुछ ऊपर से कलर डाल दिए, खूबसूरत ये ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक दफ़ा धो के देखें वो दोबारा पहनने के काबिल ही नहीं होंगे। और एक वो है जो कपड़े का प्रिंट है, जैसे आप ये देखिए प्रिंटेड कपड़ा आप भी मैं भी पहनते हैं ना, आप इसको 10 दफ़ा धोएंगे 100 दफ़ा धोएंगे इसका प्रिंट नहीं उतरेगा। वजह कपड़े के ताने बाने में आ गया। तो अखलाक ताने बाने में अच्छी चीज़ों का आना है, अच्छी चीज़ें आपके ताने बाने में आ गई। ताना बाना आप समझ रहे हैं, कपड़े के आप देखिए एक ऐसा धागा होता है और एक ऐसा होता है, जिन्होंने भी कभी यान का काम किया उनको पता होगा, एक को ताना कहते हैं और एक को बनना कहते हैं। उसमें जो प्रिंट डल जाता है ना उसको हम प्रिंटेड कपड़ा कहते हैं। ऊपर आप प्लेन पे कढ़ाई कर लें, आप पेंट डाल दें, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। अखलाक आपकी शख्सियत के अंदर घुस जाता है, ये वक्ती नहीं है, ये कमर्शियल अखलाक है कि हेलो हाउ यू डूइंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, और वो परफ्यूम लेके छिड़क रही हैं आपको, और आप ड्यूटी फ्री शॉप से घुस रहे हैं, आप कहते हो कितनी स्माइली लेडी है। दिस इज़ प्रोफेशनल अखलाक, ये उनका मार्केटिंग का काम है। एयर होस्टेस हेलो क्या हाल है मे आई हेल्प यू, ये उनका बिजनेस है, ये अखलाक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आज हम जिस दौर से गुजरे हैं ना, यहाँ लोग आप केक पेश करते हैं किसी को ईद पे ताकि उससे $5,000 का कोई फ़ायदा ले ले। अखलाक क्या, क्या आपकी तबीयत में घुस गया? चलिए अब अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। नाम नहीं लेती, हालांकि मेरे सामने लिखा हुआ डिक्शनरी है एक इमाम जुरजानी की, کہتے ہیں کہ اخلاق نفس کی راسخ کیفیت کا نام ہے. راسخ میں جمی ہوئی. آپ سوچتے ہیں رسوخ کیا ہوتا ہے؟ اثر و رسوخ کیا ہے؟ وہی چیز ہے. اس میں اخلاق کیا ہے؟ بندے کے نفس کے اندر ٹھکی ہوئی کیفیت جس سے اچھے یا برے کام سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں. اصل میں جو میں لفظ آپ کو لکھانا چاہ رہی ہوں نا, سہولت. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. مشکل نہیں ہے آپ کے لیے پھر آہستہ بولنا, آپ کے لیے سافٹ اسپوکن ہونا اوپر کی چیز نہیں ہے. آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا, او کوئی آیا ہوا ہے تو ذرا نرمی سے بات کروں بچوں سے, اور کوئی نہیں ہے تو سختی سے بات کروں, اور کسی کو دیکھ کے اسمائل دینا ہے تو ذرا میں اسمائل لے آؤں. خود ہی آ جائے منہ پہ ریفلیکسلی. ہوپ فلی سمجھ آ رہی ہے بات. سہولت کے ساتھ کسی سے اچھا یا برا کام ہو جائے, اور نیکسٹ اسٹیپ لکھیں اس کے کرنے کے لیے سوچ وچار کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اگر اچھے اخلاق صادر ہوں یعنی ہونے لگیں تو اسے اخلاق حسنہ کہیں گے, اور اگر برے کام خود بخود ہونے لگ جائیں تو اس کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ایزی ہے. اچھی باتیں خود بخود ہونے لگ جائیں تو آپ اچھے اخلاق پہ ہیں, اور بری باتیں خود بخود ہونے لگ جائیں تو برا اخلاق ہے. یہ معنی ہے اس کا. اور امام ابن تیمیہ نے تو کیا خوبصورت رشتہ جوڑا ہے. سن لیجیے ان کا ایک قول. کہتے ہیں کہ اخلاق کا مفہوم ایمان کے مفہوم سے جڑا ہوا ہے. ذرا سے اس شیٹ کو نظر ڈالیں. اخلاق کدھر ہے؟ ویک فور پہ. اور ایمان کدھر تھا؟ ڈے ون پہ. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اخلاق ایمان کے مفہوم سے جڑا ہوا ہے. جتنا ایمان پیور, خوبصورت, صاف ستھرا, اتنا اخلاق اچھا. یہی ہے روٹ ٹو فروٹ, بلیف می. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں. اخلاق مذمومہ, مذمت کے قابل, جس کو برا کہا جا سکے, اور اخلاق فاضلہ, فضل سے. فاضلہ بولنے اردو میں بول رہے ہیں تو. یہ ان کی کتاب الفوائد میں 197 پہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کیا ہوا؟ اچھے کام کرنا بغیر مشقت کے, بغیر تکلف کے. بات سمجھ گئے؟ پھر وہ ماسیوں کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل, اور اپنی کلوز سرکٹ فرینڈز کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل سوچ کے نہیں کرنا پڑتا, ہر وقت ایک ہے. دوسروں کے بیچ میں فلاں سن رہا ہے, گھر میں مہمان ہے, پھر شوہر کو بار بار یاد نہیں دلانا چاہتا, آہستہ بولیے اندر مہمان ہے, جی فلاں آئے میں ذرا آہستہ بولے. کبھی آپ دیکھیں ڈرائنگ روم میں آتے ہی جو بیگم کا چہرہ کھلتا ہے اندر, ہیلو کیا اور سنائیے, اور ڈرائنگ روم سے باہر کچن میں جو ڈانٹ کے آتی ہیں شیفس کو, یہ نہیں ہوتا. اندر پرانا ہو گیا, گھل گیا. یو آر یوزڈ آف دس, یو فیل ایزی ود دیٹ, دس از اعلیٰ اخلاق. اور اچھے اخلاق میں بہت ساری چیزیں, مثلا سخاوت. آپ کو سوچ کے اور کسی کے موٹیویشن پہ مجبور ہو کر خرچ نہیں کرنا کہ اوکے مجھے اب دینا ہی پڑے گا, اسپیکر نے فنڈ ریزنگ میں اتنا زور لگا دیا کہ کچھ خرچ کرو کچھ خرچ کرو. سخاوت ابلتی پڑتی ہے, عثمان کی طرح, ابو بکر کی طرح, عبد الرحمن بن عوف کی طرح. ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں, وہ گرتا ہی جاتا ہے گرتا ہی جاتا ہے. پھر سوچتے نہیں, اچھا ہے پروز اینڈ کون, دیا تو کیا ہوگا, نہ دیا تو کیا ہوگا, کتنا دوں, کب دوں, کس کو دوں, میرا کام دینے کا, آگے اللہ جانے اس کے بندے جانے. سخاوت, سخی, جنرس. پھر عدل. عدل کیا ہے؟ مجھے سچ بات کہنی ہے, چاہے میرا پسند کا بندہ ہے یا ناپسند ہے. ماں اور بھابھی کے بیچ میں جھگڑا ہے, کس کا قصور تھا, کون حق پہ ہے, مجھے عدل کی بات کرنی ہے. اے دل ہوا اقرب للتقوی, تقوی اندر آتا جائے گا, عدل سامنے آتا جائے گا. اس طرح صبر. یو آر ناٹ فورس ٹو بی پیشنٹ. صبر کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات صبر والی ہے. ہر جگہ صابر ہیں آپ, سفر میں صابر, حضر میں صابر, آپ کو کچھ مل گیا تو صابر, نہ ملا تو صابر. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلس ہم کریں گے ابھی آج انشاءاللہ. حلم, بی ہم حلم. اور حلم کو تو لکھ لیجئے, میں ایک جملہ اپنا پسندیدہ بولنے لگی ہوں, علم اور حلم مل جائے, دس از بیسٹ کریکٹر. جب علم والوں کے پاس حلم نہیں ہوتا, حلم کو حلیم سے یاد کر لیں, سافٹ, ٹینڈر, کھلے ہوئے. آج بات کریں گے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی. علم اور حلم مل جائے, دس از دا کریکٹر وی نیڈ ٹو ریز. یہ کردار چاہیے. जब हिल्म है ना, सिर्फ और हिल्म नहीं, तो आप इस दीन की हदों से बाहर निकलकर हलीम हो जाएंगे। फिर औरतें मर्दों के साथ और मर्दें औरतों के साथ बड़ी सॉफ्ट होंगी। और सिर्फ इल्म हो और हिल्म ना हो तो आप कुंद छुरी हैं। ये भी जहन्नम, ये भी फलाना, ये जहन्नम, ये उधर उधर। हिल्म और इल्म को आज के दौर में मिलाने की ज़रूरत है, ये नहीं मिल पा रहा। मुश्किल से मिलता है, कितनी मुश्किल से घोटते हैं हलीम। कभी कोई दाल सख्त रह गई तो कभी कोई रह गई। और अब आपको समझ आएगा कि ये 114 सूरतों को जज्ब कैसे करना, और ये जिस्म कैसा कैसे बनती है, ये वक्त पे आयतें याद कैसे आ जाती हैं, और ये मौका बे मौका जब हालात आते हैं तो किस तरीके से कॉप करती हैं। यानी अब्जॉर्बिंग का वक्त है। आपने दाल कभी पकाई होगी, कल तो फौरन जाती है, घुलती बड़ी देर से। कई लोग वहीं पका के बंद करते हैं, और जिनकी मज़े की होती है देखिए उसको घोलते हैं, घोटना पड़ता है। अब आपने कुरान का जो इल्म है ना, इसको घोटना है, और अगर नहीं घुटेंगे तो आपकी मर्जी। फिर आप बड़े मार के करेंगे और हम तक खबरें पहुंचेंगी। वो आपकी स्टूडेंट ने ये किया, बिलीव मी। और वो फलां, वो शादी में थी, एक बाल नजर आ रहा था उनके सर से। कुरान का कोर्स करती और एक बाल, और वो स्काफ पहन के गीबत कर रही थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये फिर ताने मिलेंगे हमें, बिलीव मी। और अगर आप हिलम बन गया आपके अंदर, सब्र आ गया, सब आ गया, तो फिर आप चमकेंगे, और फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, सबको पता लग जाएगा आपके हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप में से कोई यहाँ अपने आप को स्टेज पे देखे ना, अपनी ज़िंदगी की हर दूसरी चीज़ छोड़कर सिर्फ इसको लेने पे तैयार हो जाए। क्यों? कि आप खाना पका लें लेकिन फाइनल टचेस ना दें और सर्व कर दें, कोई भी नहीं खाएगा, अच्छा नहीं होगा खाना। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके अखलाक में वक्त के साथ आएगी, आती है, आ रही होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ गल रहे हैं हम। एक वक्त आएगा जब हम एक मुकम्मल पर्सनालिटी पे आएंगे, फिर आप खुद को नहीं पहचानेंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, आई कैन से दिस, कि अगर आप वही करते जाएं जो आपसे मतलूब है और कहा जाए, 2 साल के बाद आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं। और अगर आपको आजमाना है तो किसी बंदे को जाकर देख लीजिए जो आपके मरहलों से गुजर चुका। सब्र आता ही नहीं है, अल्लाह के रस्ते की भाग दौड़ समझ ही नहीं आती, हिल्म आता ही नहीं है। ये बड़े बड़े काम करने का हौसला आम बंदों में तो होगा नहीं, उनकी तो जान निकल जाएगी। वो अपनी ज़ात पे कुछ खर्च करेंगे ना, तो वो हज़ारों का चेक लिखेंगे। बस वो ये देखेंगे बैंक में पीछे कुछ है अभी कि नहीं, चेक बाउंस ना हो जाए, ख्वाहिश है ना एक। और जब वो अल्लाह के रस्ते में देंगे, एक लिखेंगे अदद, 2 ज़ीरो भी डाल देंगे तो 10 सवाल करेंगे, किसको देंगे, कहाँ लगेगा, कहाँ जाएगा। ये शख्सियत नहीं रहती फिर। फिर वो कहते हैं कि जानता हूँ सवाबे जोहद, लेकिन तबीयत इधर नहीं आती तो क्या करूँ। और अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है फारसी का, मफहूम क्या है कि तू गनी तू जानता है हिसाबे कमो बेशरा, मेरा काम काम करना था कर दिया। यानी ये जो हम कहते हैं इतने नफिल पढ़ो तो इतना अजर, इतने, वो कहते हैं अल्लाह तू ये हिसाब रख, मुझे नहीं आता ये हिसाब किताब रखना, मैंने नेकी कर दी, तू जाके इसमें कमो बेश, इसमें ज़ीरो कम लगा दे, ज़्यादा लगा दे, आई डोंट माइंड इट, मेरा काम था काम करना। और बड़े बड़े सलाफ कहते थे कि नेकी की तौफीक मिल जाए और नेकी हो जाए, उसके बाद मैं प्लस माइनस में नहीं पड़ता। ये गिन गिन के नेकियां करना और गिन गिन के दीन के कामों में आना और लगाना और जाना, ये आम लोगों का काम होता है। चलो कुछ तो कर लें, चलो कुछ तो वक्त लगा दें, चलो एक दिन इसे हफ्ते में, चलो एक, चलो कुछ नहीं वो ख्वाब देख लिया, कोई सदका कर दें $50 का, ये आम लोगों का खाता होता है। बड़े लोगों के खाते सांझे होते हैं, अल्लाह का खाता उनका खाता एक होता है, एक अकाउंट होता है अल्लाह और बंदे का। जिसको पहले ज़रूरत पड़ गई उसका, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, फिर से फिर देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। बात समझ गए? तो ये सारा चीज़ें आपका अखलाक, अखलाक इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, यू। जब आप कहते हैं आई एम, दिस इज़ अखलाक। अखलाक का ताल्लुक ज़ाहरी चंद चीज़ों से नहीं है। तो असूलन मैंने आपको ये मामलात से पहले पढ़ाना था, बिलीव मी, मैंने सोचा भी था। फिर मुझे लगा कि जो हुकूक़ुल इबाद के साथ हमारे जहन में आते हैं, माँ बाप के हुकूक, बच्चों के, ये अब आखिरी वीक पर डाल दूंगी तो आप लोग कहेंगे शायद ये अहम ही नहीं है। इस सोच से मैंने आपको वो पहले पढ़ाया। क्यों? ये जो पढ़ने लगे ना, ये अखलाकियात रूह हैं मामलात की। आप एक अच्छा किरदार डिवेलप कर दें, बच्चों का चलें अब करना शुरू कर दें, अपना तो वक्त गुजर गया हमारा, अभी तो मेहनत में ही है ना। अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बहन बन जाएगी, वो अच्छी स्टूडेंट भी होगी, वो अच्छी नेबर भी होगी। बात समझ गए? जो अच्छा होगा ना, मैं अक्सर जुमला बोलती हूँ, जो अच्छा बेटा है वो कल अच्छा शौहर भी होगा, कल अच्छा बाप भी होगा, वो अच्छा भाई भी होगा। आप किरदार 2-4 अपने जहन में लें, अपने इर्द गिर्द वालों के, खानदान के ले लें, बहन भाइयों में ले लें, जिसको अच्छा कहेंगे उसको सभी अच्छा कहते हैं। اور اس میں یہ اخلاقیات ہوں گی جب ہم پڑھنے والے ہیں. بات واضح. اور جو خراب ہوتے ہیں نا وہ پھر پہلے ماؤں نے بگاڑا ہوتا ہے، پھر وہ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، پھر بہنوں کو ستاتے ہیں، پھر بعد میں وہ ساری عمر تنگ کرتے ہیں. وہ کردار کی کمی ہوتی ہے. تو بہرحال اچھے اخلاق میں حلم بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، شجاعت بھی ہے، احسان بھی ہے، نرمی بھی ہے. اور اس میں آپ ایک لمبی لسٹ دیکھیں گے، خیر خواہی بھی اسی میں آتی ہے، حیا بھی اسی میں ہے، صبر اور شکر بھی اسی میں ہے، غنا بھی اسی میں ہے، رحم اور عفو درگزر بھی اسی میں ہے، اور اسی طرح پھر چھوٹوں بڑوں کے ساتھ شفقت بھی اسی میں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش تو یہی کریں گے کہ 2 دن اخلاق حسنہ کریں ان 4 دنوں میں سے، اور 2 دن میں اخلاق سیئہ کریں. ویسے اصولاً مجھے ایک ہی دن میں سارا اخلاق حسنہ کرا کے 3 دن میں اخلاق سیئہ پہ بات کرنی چاہیے. بلیو می، اگر ایک اچھے ڈاکٹر کی نظر سے دیکھوں نا تو مرض ادھر زیادہ ہے. اچھی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں بٹ بری نہیں چھٹتی، پرابلم یہ ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کے نصیب میں کیا ہے جس پہ اللہ نے آپ کا رکھا ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ اچھے اخلاق کی بات تو ہم نے کر ہی لی، اور اخلاق حسنہ جو ہے نا اسی کا دوسرا نام اخلاق فاضلہ بھی ہے. فاضلہ فضل سے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.